इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। सबसे बड़ी आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह को 3.5 वर्ष की सार्वजनिक सेवा के बाद यीशु के जीवन के आखिरी सप्ताह में जब हम आते हैं तो वहां पर भी यीशु और धार्मिक अगुओं के बीच में तनाव बढ़ रहा है। यीशु ने मंदिर की सफाई करके और अंजीर के पेड़ को शाप देकर और तोड़ों का दृष्टांत सुनाकर उन्हें चुनौती दी है, परंतु वे भी यीशु के अधिकार को चुनौती दे रहे थे और उन्होंने यीशु को धार्मिक और राजनीति का शांति के में उलझाने का प्रयास किया। और इस हिस्से का यही संदर्भ है। यह कहानी सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में है जो मरकुस 12:28 से शुरू होती है और वहां पर हम पढ़ते हैं, शास्त्रियों में से एक ने आकर उसे विवाद करते सुना और यह जान करके उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उनसे पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में यह मुख्य है। इसराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी बहुवचन और कोई आज्ञा नहीं, एक वचन। शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ कोई नहीं, और उसे पूरे मन और सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसे समझ से उत्तर दिया तो उसे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे पूछने का हयाम ना हुआ। यीशु इस प्रश्न का उत्तर शेमा अर्थात व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में उल्लेख करते हुए देते हैं, जो यहूदी धर्म में एक बहुत ही जाना पहचाना पद है। इसका आरंभ एक ही ईश्वरवाद की पुष्टि से होता है कि केवल एक ही परमेश्वर है, और फिर यह कहता है कि इस एक परमेश्वर के प्रति हमारी आरंभिक जिम्मेवारी है कि हम उससे प्रेम करें और पूरी भावना के साथ उससे प्रेम करें और अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से उससे भरपूर प्रेम करें, और जो कुछ आपके पास है उससे बिना कुछ बचाए हुए उससे प्रेम करना है, क्योंकि यह सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि हमें केवल एक ही कार्य करना हो तो हमें यही करना चाहिए। तो फिर इसका अर्थ समझना वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रेम का क्या अर्थ है, और मैं बहुत से बिंदुओं को बता सकता हूं, परंतु आज सुबह सिर्फ 2 ही बिंदुओं पर विचार करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि परमेश्वर भावनात्मक है। प्यूरिटियन लोगों ने जो कहा कि हमारी भावनाएं उसमें शामिल हैं, परंतु जब हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो यह व्यक्तिगत भी है। हमें परमेश्वर से जुड़ी चीजों से नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रेम करना है। जब हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो यह भावनात्मक होगा और व्यक्तिगत भी होगा। मैं आज सुबह इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा। पहली बात, परमेश्वर के प्रति क्या आपका और मेरा प्रेम भावनात्मक है? क्या यह आपको वैसे प्रेरित करता है जैसे एक अच्छा गीत आपको प्रेरित करता है? क्या परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाता है? यीशु के साथ आपका संबंध क्या गहराई से आपके प्राण को प्रभावित करता है? क्या आपका प्रेम भावनात्मक है? मुझे यह मालूम है कि हम लोग भिन्न भिन्न हैं और अलग अलग तरह से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसे अपनी बांह पर पहनते हैं और कुछ लोग इसे अपने अंदर दफन कर लेते हैं। हम सब अलग अलग तरह से अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। यदि आपके बच्चे पूरी तरह से आज्ञाकारी हों परंतु उनमें माता पिता के प्रति कोई भावनात्मक लगाव ना हो तो क्या यह प्रेम है? यदि आपके जीवन साथी पूर्ण रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता हो, मैं आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, और जो कुछ आपकी उम्मीद हो वह करता हो परंतु उसमें गहरे भावनात्मक प्रभावशाली संबंध और लगाव आपस ना हो, तो क्या आप इसे प्रेम कह सकते हैं? और उत्तर तो ना है। आप प्रेम के व्यक्तिगत भावनाओं के तत्व को बाहर निकालने के बाद उसे प्रेम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बातों के मध्य प्रेम भावनात्मक है, इसलिए प्रेमी परमेश्वर भावनात्मक संदर्भ में कैसा दिखता है? इसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। कई तरह से यह प्रेम की तरह दिखता है। परमेश्वर से प्रेम करना ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम अपनी पत्नी से करना है। आशा है कि आप अपनी पत्नी से ऐसा ही प्रेम करते हैं। यह अत्यंत भावनात्मक है। आप समय बिताना चाहते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को समझना चाहते हैं, आप इस बात को समझना चाहते हैं कि वह किस बात से प्रसन्न होती है। दूसरे शब्दों में यह भावनात्मक होने के साथ साथ इसमें सूचित भी किया जाता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आप इसे समझना चाहते हैं। यह प्रेम की भावना का हिस्सा है, परंतु फिर यह प्रेम की भावना मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा ही होता है ना। यदि मैंने ऐसा कहा कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखता हूं, तो यह बात तो बड़ी भावनात्मक थी, परंतु इसने मेरे कार्यों को प्रभावित नहीं किया, तो यह प्रेम नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा कार्य में परिवर्तित होता है। तो मैं उसे प्रोत्साहित करूंगा, मैं हमेशा उसे मधुरता से बात करूंगा। मैं इसलिए काम करता हूं कि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं, और जब वह मुझसे दूर होती है तो मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। यह भावनात्मक प्रेम है जो कार्यों से परिवर्तित होता है, और मेरा प्रेम अत्यधिक भावुक है। यह मुझे निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए नहीं कि मुझे करना है, परंतु इसलिए कि मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, और यह भावनात्मक है और मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर से प्रेम करना भी ऐसा ही है, परंतु कई मायनों में यह ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम हो। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? भजन संहिता को पढ़िए, वहां बार बार यह बात मिलती है। जैसे कि भजन संहिता 18:19 पद में, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है। भजन संहिता 32:10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से गिरा रहेगा। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वह मुझसे प्रसन्न होता है, और यही प्रेम उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यदि यूहन्ना 3:16 का उचित अनुवाद बाइबल में होता तो यह इस प्रकार से होता, परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप देखें कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, वह उसे प्रेरित करती है कि वह मेरे और आपके लिए कार्य करे, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप भजन संहिता 59:16 जैसे हिस्सों में जा सकते हैं, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और बोर को तेरी करुणा की जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आप इस बात को देखिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वह मुझसे प्रसन्न होता है, और यह बात उसे प्रेरित करती है कि वह मेरे बदले में या मेरे लिए काम करे। यह प्रेमी परमेश्वर कैसा दिखाई पड़ता है? जहां परमेश्वर से मैं कैसे प्रेम करूं, यह बात कैसी दिखती है? यह करीब करीब वैसा है जैसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यह भावनात्मक है, इसका मतलब है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ना कि मुझे ऐसा करना है, और परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहता हूं। परंतु जब मैं पाप करता हूं तो हमारे बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। जब हम दूर हो जाते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पूरे भजन संहिता में ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जो इसी बात की चर्चा करते हैं। भजन संहिता 42:1-2, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं, जीवित ईश्वर हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। भजन संहिता 43:4 पद का पहला हिस्सा, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा जो मेरे अति अनुग्रह का कुंड है। दाऊद परमेश्वर को यही कहता है, मेरा अति आनंद। भजन संहिता 63:1, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यतन से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यह प्रेमी परमेश्वर कैसा दिखाई देता है? यह करीब करीब ऐसा लगता है जैसा मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। यह प्रेमी परमेश्वर कैसा दिखाई पड़ता है? यह ऐसा प्रतीत होता है जैसा प्रेम परमेश्वर मुझसे करता है। यह प्रेमी परमेश्वर कैसा दिखाई पड़ता है? यह भावनात्मक है, मैं उसे जानना चाहता हूं, मुझे उसकी चाहत है, मैं उसकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, और यही प्रेम मुझे कार्य करने के लिए विवश करता है, और मैं उसके साथ समय बिताता हूं और उसके पत्र को पढ़ता हूं जो मेरे लिए है, और मैं जितनी अधिक बातचीत उससे कर सकता हूं उसे करने का प्रयास करूंगा, और मैं दूसरों को उसके बारे में बताऊंगा। प्रेम भावनात्मक होता है और उसमें गहरा लगाव होता है। यह हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम हमें आज्ञाकारी बनाता है। जब आप यूहन्ना 14:13 जैसे पदों को पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परंतु इस बात को सुनिए, परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञा मानना एक ही बात नहीं है। इन दोनों धारणाओं को बराबरी से देखने की गलती करना बहुत ही आसान है। आप यह विचार करने लगते हैं कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं तो आप उससे प्रेम कर रहे हैं। मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूं, कुछ लोगों के पास जाकर उनसे पूछें कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और मुझे यह जवाब सुनकर आश्चर्य नहीं होगा, हाँ हाँ मैं तो वही करता हूं जो मुझे करना चाहिए, मैं गिरजाघर जाता हूं। प्रेम आज्ञाकारिता के आधार पर तो है, परंतु यह एक ही बात नहीं। यह बात सुनिए, गलती करना आसान है, परंतु परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञा मानना एक बात नहीं है। यदि मैं काटी हुई घास को चलकर इकट्ठा करूं तो क्या मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, या मैं एक माली हूं? ये दोनों एक ही बात नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हाँ हम उसकी आज्ञा मानेंगे, परंतु यह तो केवल आज्ञाकारिता है, परंतु प्रेम इन सब बातों से बढ़कर है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि वह हमारा सबसे बड़ा आनंद है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है कि वह हमारी गहरी चाहत है। परमेश्वर के लिए इस बेहद सचित और भावनात्मक समर्पण के द्वारा, मेरे लिए उसके प्रेम के द्वारा और उसके लिए मेरे प्रेम के द्वारा मैं आज्ञाकारिता का कार्य करता हूं, परंतु यह सब एक ही बात नहीं है। वैसे सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर का पसंद करना नहीं है, परंतु उससे अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना है। परमेश्वर अपने चेलों के जीवन से सर्वोच्च स्थान की मांग करता है। यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर प्रेम की मांग करता है, वह अपने शिष्यों के जीवन में सर्वोच्च स्थान की मांग करता है। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना है, उसे पसंद करना नहीं है। यह अत्यंत भावनात्मक है, सचित है, परंतु इसमें लगाव है और यह हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूती है। परमेश्वर से प्रेम कीजिए। यदि आप और कुछ भी नहीं करते तो आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए। दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और प्रश्न यह है कि परमेश्वर से हमारा प्रेम क्या व्यक्तिगत है, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना है। जब परमेश्वर के बारे में अच्छी बातों से प्रेम करना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी प्रवृत्ति परमेश्वर के व्यक्तित्व के प्रेम कर नहीं, परंतु उनसे जुड़ी भौतिक चीजों से प्रेम करने की है, अच्छी चीजें जो उससे संबंधित हैं। तो खतरा इस बात का है कि हम उन अच्छी चीजों से प्रेम को और परमेश्वर से प्रेम करने की बराबरी का स्थान दे देते हैं। जब आप अच्छी चीजों को परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करने लगते हैं तो वे अच्छी चीजें मूर्त बन जाती हैं। मैं सोचता हूं यह मानवीय स्वभाव का एक हिस्सा है। जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, चखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारा लगाव उसी से हो जाता है। और मेरा विचार है कि हम परमेश्वर के साथ यही करते हैं। तो मेरी चिंता यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करें, ना कि परमेश्वर से संबंधित चीजों से। इसके बहुत से उदाहरण हैं, मैं दो को बता रहा हूं। बाइबल से प्रेम करना परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। ये दोनों बातें एक की नहीं है। यह बात तो जाहिर है कि बाइबल अच्छी है, बिना बाइबल की जानकारी के हम यीशु जैसे कैसे बन सकते हैं? जब हमें उसका ज्ञान ही नहीं है कि वह कैसा है, हमारा ज्ञान भावनात्मक हो सकता है जिसे हम नहीं चाहते, परंतु बाइबल से प्रेम करने का यह मतलब नहीं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसके पन्नों को पढ़ लेने का अर्थ यह नहीं कि आप इसके लेखक की बात सुन रहे हैं। फरीसी लोग पुराने नियम के प्रेमी थे, उन्होंने पूरा जीवन इसका अध्ययन करने में लगाया। तो अभी यीशु उन फरीसियों और पवित्र शास्त्र के प्रेम के प्रति क्या कहते हैं? यूहन्ना 5:37 से आरंभ करके, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना ना उसका रूप देखा है। बाइबल से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना एक ही नहीं है। मेरे पास एक परीक्षा है, मैं इसे खुद पर इस्तेमाल करता हूं और मैं इसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप शब्दों के साथ रुक जाते हैं, या शब्द आपको रोक लेते हैं जो परमेश्वर के शब्द हैं? क्या वे शब्द आपकी मुलाकात उसके लेखक से करवाते हैं, एक ऐसी मुलाकात जिससे आपका जीवन बदल जाता है? यदि आप और मैं शब्दों के साथ रुककर यह कहते हैं, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है, और हमें इसके मस्तिष्क के बौद्धिक बाग में डाल लें और हम बहुत ज्ञान हासिल कर लें, परंतु हमारी मुलाकात कभी भी परमेश्वर से ना हो और हम उसके वचन को यह अनुमति ना दें कि वह हमारे जीवन को बदल दे, तब यह सवाल उठता है, क्या हम पवित्र शास्त्र से प्रेम करते हैं या उसके लेखक से प्रेम करते हैं? ये दोनों एक ही बात नहीं है। फरीसियों के साथ तो यह बात बिल्कुल ही नहीं थी। बाइबल से प्रेम करना परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। एक दूसरा उदाहरण है, आराधना से प्रेम करना परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। आप यह बात जानते हैं कि कुछ लोग आराधना करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु ना ही वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ना ही वह उसकी आराधना करते हैं। कभी कभी वह गिरजाघर का द्वार खुला होता है तो वह आते हैं, उन्हें संगीत करना बहुत पसंद है। हाँ, ये सब बातें अच्छी तो हैं और वे अपने शरीर पर संगीत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के पड़ने से प्रसन्न होते हैं, परंतु उनका ध्यान केवल अपवित्र त्रि एकता पर केंद्रित रहता है, यानी कि मैं और मैं, परमेश्वर पर नहीं। यदि मेरा ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि मैं कैसा महसूस करता हूं, ना कि इस बात पर कि परमेश्वर की स्तुति या महिमा हुई है या नहीं, यदि मैं गिरजाघर में अपने बारे में अच्छा महसूस करते हुए निकलता हूं और परमेश्वर की भलाई का एहसास करते हुए धन्यवादी मन से नहीं, तो मुझे स्वयं से यह प्रश्न पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या आराधना से। और ये दोनों बातें एक सी नहीं है। मैं अक्सर अपनी कलीसिया के बारे में दो बातें सुनता हूं कि तुम उस कलीसिया में क्यों नहीं जाते। हमें आराधना बहुत पसंद है, हमें वहां पर प्रचार और भी बहुत सी बातें पसंद है। हाँ, यह तो बड़ी अच्छी बात है। जहां से यह सोचते हम बाहर ना निकलें कि मैं चाहता हूं कि आप वहां की आराधना या प्रचार को पसंद ना करें, यह बात तो महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सुनना पसंद करता हूं कि आप चर्च क्यों जाते हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे पहले कार्यों में पहले करते हैं। हो सकता है कि वे दूसरी बातों में गड़बड़ी करें, परंतु वे पहले कार्यों को पहले करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब भी मैं वहां पर जाता हूं तो मैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित होता हूं। आराधना में मुझे परमेश्वर का प्रेम का इजहार करने का प्रोत्साहन मिलता है, उपदेश में बाइबल की जानकारी के लिए प्रोत्साहन मिलता है। परंतु जब मैं कलीसिया में जाता हूं तो मैं ऐसे लोगों के बीच में हो जाता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से पहली आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, एक कलीसिया की यही पहचान होनी चाहिए। जब पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आज्ञा का पालन है, जब भावनात्मक और बेहद व्यक्तिगत है। परंतु इस उल्लेख एक वचन, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि उस शास्त्री ने जब बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, परंतु यीशु इस प्रश्न का उत्तर एक ही आज्ञा देकर रुक नहीं जाते, वह दूसरी बड़ी आज्ञा को भी बताते हैं, क्योंकि आप अपने पड़ोसी से प्रेम किए बिना परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं। यह प्रेम आपके कार्यों में दिखाई पड़ना चाहिए। संक्षेप में, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास एक ऐसा सिक्का नहीं हो सकता जिसका एक ही पहलू है। 31 पद पर ध्यान दीजिए कि यीशु ने क्या निष्कर्ष निकाला। इसे एक वचन बड़ी और कई कोई आज्ञा नहीं है। एक आज्ञा को माने बिना आप दूसरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी से प्रेम किए बिना आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यह असंभव बात है। यीशु जानते हैं कि हमारी प्रवृत्ति भावनात्मक रूप से प्रेम करने की है और मेरा ऐसा मानना है, परंतु सच्चा प्रेम कार्य के द्वारा होता है। यदि मैं और आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। पड़ोसी शब्द एकदम सटीक अनुवाद नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई और शब्द इसके लिए नहीं है। यूनानी भाषा में इस शब्द का वास्तविक अर्थ अन्य या दूसरे व्यक्ति से है, इसलिए इसका संबंध बहुत सारे लोगों से है, केवल उनसे नहीं जो आपकी गली में या आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं। यह उन लोगों से संबंधित है जिस किसी के साथ आप रहते हैं या कोई भी जो किसी भी मामले में आपसे जुड़ा है, वह कहीं का भी हो सकता है, बाहरी दूसरा या अन्य व्यक्ति। और परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम, उन लोगों के प्रति हमारा प्रेम प्रवाहित होना चाहिए जिनके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, या दूसरे या अन्य लोगों से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरे लोगों से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4:20-21 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यही तो दूसरा व्यक्ति है, विशेषकर जो कलीसिया के संदर्भ में है, और यही हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह दूसरे अन्य व्यक्ति अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर से प्रेम निश्चित रूप से हमारी अगुवाई करता है हम दूसरों से प्रेम रखें। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम दूसरों से प्रेम करने के कार्य को भी करें। पहला ग्रंथियां 13 प्रेम के बारे में बहुत सी बातें बताता है। वहां पर यह लिखा है 4 से आरंभ करके, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति पर नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह जंजलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, और वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम दूसरों के लिए केवल भावनाओं से नहीं, सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, परंतु ठोस तरीके से हमारे कार्यों के द्वारा प्रवाहित होता है। या मेरे पैरों को प्रभावित करता है, या मेरे हाथ क्या करते हैं उसने प्रभावित करता है, और या मेरी जीव को भी प्रभावित करता है। मेरे पिताजी मुझे एक बार एक पास्टर की कहानी सुनाई जिन्हें वह जानते थे। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में यह सुनी थी, जिसका नाम जुआन कार्ल्स आर्टिस था। एक रविवार सुबह उन्होंने कलीसिया के सामने आकर कहा, आज की सुबह संदेश यह है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। फिर वह बैठ के 5 मिनट बाद उठकर फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको समझा रहा हूं और फिर उसी पाठ को दोहरा रहा हूं, और इस सुबह का संदेश है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और फिर वह बैठ गए और फिर वह पुलपिट पर वापस नहीं आए। वह जाकर पहली पंक्ति में बैठी महिला के बगल में जाकर बैठ गए, जो बहुत सालों से उनके घर की सफाई कर रही थी, और उन्होंने महसूस किया कि वह केवल उसके नाम को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानते हैं। और उन्होंने वहां बैठकर उस महिला से बातचीत की, और उनको पता चला कि उसके पति को मिर्गी आती है और वह नौकरी नहीं कर सकती थी, और वह गत्तों से बनी हुई एक झोंपड़ी में रहती थी। तो अगले दिन जुआन कार्ल्स आर्टिस ने लकड़ियां खरीदकर अपने पड़ोसी को दी, ताकि वह लोग बारिश में लकड़ी के घर में रह सकें। आज की सुबह के लिए यही संदेश है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने बगल में बैठे व्यक्ति से पूछिए, क्या वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सुनिए, आप और मैं दूसरे व्यक्तियों के बारे में किस प्रकार बात करते हैं जब वे मौजूद नहीं होते हैं? क्या हमारी जीभ प्रेम और अनुग्रह से भरी होती है, जहां आलोचनाओं और दोषारोपण से भरी होती है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही समय में परमेश्वर से प्रेम करें और उसी समय दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें और आलोचना और दोषारोपण करें। और मैं बहुत सी उदाहरणों को ले सकता हूं, परंतु जीभ सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप और मैं मानव जीवन के इतिहास में कर सकते हैं। प्रेम के निश्चित रूप में मेरी भावनाएं प्रभावित होनी चाहिए और यह गहरा होना चाहिए। मेरा प्रेम परमेश्वर के व्यक्तित्व की तरफ जाना चाहिए, ना कि उससे संबंधित वस्तुओं के प्रति। और परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम मेरे जीवन से मेरे पड़ोसियों, मेरे भाइयों और बहनों के प्रति प्रवाहित होना चाहिए। इसे मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी जीभ, मेरी आंखें अवश्य प्रभावित होनी चाहिए। यदि कलीसियाई रूप में और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इस प्रेम का प्रगटीकरण इस बात में है कि हम अपने भाई बहनों से कैसे व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के विषय में कैसी बातें करते हैं।